मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 25 जुलाई 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं यानी कि डॉक्टर विजय अग्रवाल। फ्रेंड्स, आज के लिए जो मैंने विषय चुना है, दरअसल सच पूछे तो मैंने केवल फैसला भर किया है। मुझे किसी ने यह विषय दिया है और मुझे इस बात का गर्व है, कह लीजिए, या बेहद खुशी है कि देने वाले भी जो व्यक्ति हैं वो हैं भारत के निवर्तमान राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी जी। ऐसा मत समझिएगा कि उन्होंने कुछ मुझे फोन करके दिया है या मेरे पास कोई पत्र लिखा है, मेल भेजा है, ऐसा नहीं है। वे यह विषय पूरे राष्ट्र को दे रहे थे, उन्होंने पूरे राष्ट्र को दिया है, उसमें से मैंने अपने लिए पिकअप कर लिया है। और चूंकि अब वो राष्ट्र की संपत्ति है तो लोग अपने अपने ढंग से उसे पिकअप करते रहेंगे। फ्रेंड्स, कल की न्यूज आपने सुनी होगी और उस न्यूज में जब वो अपना विदाई वक्तव्य दे रहे थे, उसी समय उन्होंने एक तरीके से कह लीजिए कि जो हमारे नए राष्ट्रपति जी हैं उनका स्वागत भी किया। स्वागत करने के दौरान उन्होंने जो कामना की हमारे नए राष्ट्रपति जी के लिए, खासकर मैंने वहां से आज का विषय पकड़ा है, कह लीजिए चुना भी नहीं है, पकड़ा है। आपने गौर किया होगा, न्यूज में भी इस बात को शामिल किया गया और बाद में राष्ट्रपति जी की आवाज भी उस पर सुनाई गई, और वो थी कि मैं आपकी सफलता और प्रसन्नता की कामना करता हूं, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। उन्होंने इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया, सफलता एवं प्रसन्नता। मित्रों, मुझे ये दोनों शब्द बहुत अच्छे लगे, बेहद अच्छे लगे, और सच पूछिए तो सुनते ही मन एक अजीब तरह की अनुभूति से भर उठा, कहीं न कहीं गमगमा उठा, मैं कहना चाहूंगा। अब पता नहीं गमगमाना का अर्थ आपको मालूम है कि नहीं है, जब हम खूब खुशी से भर जाते हैं या कह लीजिए जब फूलों की सुगंधों से मन बिल्कुल प्रसन्न चित्त हो जाता है तो उसे कहा जाता है गमकना से बना है गमगमा उठा, पूरा का पूरा माहौल गमक उठा। मित्रों, मैं थोड़ा रोमांचित भी हुआ और फिर मुझे लगा कि नहीं, आज के लिए यह विषय सबसे अधिक मौजूद होगा उनके लिए भी, जो मेरे नौजवान साथी अपने कैरियर के जद्दोजहद से गुजर रहे हैं, और उनके लिए भी जो अपने कैरियर में ऑलरेडी लग चुके हैं, और उनके लिए भी जो ऑलरेडी कैरियर से निवृत्त होकर अब पूरी तरह से एक इत्मीनान की जिंदगी जी रहे हैं। मित्रों, इस दो शब्दों के इस्तेमाल से क्या आपके दिमाग में यह बात नहीं कौंधती कि ये दोनों अलग हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों की कामना की है, सफलता की भी और प्रसन्नता की भी। क्या ये दोनों एक नहीं है? यहां से सोचना शुरू कीजिए कि जब हम सफल होते हैं तो क्या हम प्रसन्न नहीं होते? और यदि हम सफल होकर के ही प्रसन्न होते हैं तो फिर दोनों की अलग अलग कामना करने की जरूरत क्या है? जैसे अगर हम अपने वर्तमान जो राष्ट्रपति आज शपथ लेने जा रहे हैं उनकी बात करें तो वो हमारे देश के प्रथम नागरिक बने हैं, ये मतलब ये कह लीजिए कि भारतीय इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया है, और इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है? ये बहुत बड़ी सफलता है, सर्वोत्तम सफलता है और सर्वोच्च सफलता भी है। तो बट नेचुरल है कि जब कोई भी इस सफलता को प्राप्त करेगा तो वह प्रसन्न होगा ही होगा, तो फिर अलग से कामना क्यों? मतलब यह सोचने की बात है, मैं केवल एक तरीका बता रहा हूं जिससे हम चीजों को समझ सकते हैं, अलग अलग कोणों से देख परख सकते हैं और फिर अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे निवर्तमान राष्ट्रपति तो दोनों एक नहीं है। तो एक क्या इसलिए नहीं है कि जरूरी नहीं कि सफलता आदमी को प्रसन्नता दे? फिर से एक सवाल उठता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप जिस चीज को पाना चाहते हैं अगर वो आपको मिल गई तो आप प्रसन्न ही हो जाएंगे, या ये हो सकता है कि आप जिसे पाना चाहते हैं आपको वह मिल गई यानी कि आप सफल हो गए, लेकिन पता लगा कि जब सफल हुए उस समय तो प्रसन्नता हुई लेकिन कुछ समय के बाद वो प्रसन्नता चली गई, गायब हो गई आपको छोड़ छाड़ करके। सफलता तो आपके पास है, उसमें तो आपका नाम दर्ज हो गया है, वह आपके पास है, लेकिन प्रसन्नता गायब हो गई। तो इसका मतलब क्या यह हुआ कि नहीं, दोनों एक नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। और फिर यहां एक सवाल और भी उठता है, मतलब मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैं सवाल पर सवाल किए जा रहा हूं, एक सवाल और भी उठता है और वो ये कि क्या बिना सफलता के प्रसन्नता नहीं मिल सकती। मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो प्रसन्नता है वो सफलता की मोहताज है। मैं तभी प्रसन्न हो सकता हूं जब मैं सफल हूं। इसका मतलब हुआ कि जो असफल व्यक्ति है वो प्रसन्न हो ही नहीं सकता। और अगर किसी को प्रसन्न होना है तो उसकी जो सीढ़ी है वो सफलता है, या एकमात्र सीढ़ी सफलता है। और अगर एकमात्र सीढ़ी सफलता नहीं है तो और दूसरी बहुत सी सीढ़ियां हैं। मित्रों, मैं जानता हूं कि मैंने थोड़ा सा आपको शब्द जाल में उलझा दिया है ना, थोड़े से आप उलझ से गए होंगे कि सर ये क्या कहते चले जा रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप थोड़े से इत्मीनान से सोचेंगे तो पल्ले पड़ेगा। मैं तो केवल मथ रहा हूं, और जब चीजें मथी जाती हैं तो आपको सिर्फ आवाज सुनाई पड़ती है। कुछ देर तक तो ये भी लगता रहता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल जिसे बिलोया जा रहा है, मथा जा रहा है, वो हिल डुल रहा है बस। लेकिन कुछ समय के बाद अगर आप धैर्य रखेंगे तो आपको पहले तो मक्खन के छोटे छोटे कण दिखाई देंगे, और फिर उसके लोंदे बनने शुरू हो जाएंगे, और मक्खन ऊपर बिल्कुल तैरने लगेगा और मथनी के आसपास केंद्रित हो जाएगा। यही होता है जब हम किसी चीज को लॉजिकल तरीके से सोचते हैं, तो उसकी प्रक्रिया मित्रों यही होती है। यहां मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा हूं मित्रों, वो ये कि पहली बात तो यह, जो मैं अब अपना निष्कर्ष दे रहा हूं, आप सब अपने अपने निष्कर्ष निकालें। पहली बात तो यह कि सफलता और प्रसन्नता दोनों मेरी दृष्टि से बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो अटपटी बात हो गई। यस, अलग अलग हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि मुझे प्रसन्न होना है, रहना है, तो यह पूरी तरह से मेरे हाथ में है। मैं अगर असफल भी होता हूं तो मुझे उसमें भी एक प्रसन्नता का एहसास होगा, बशर्ते कि मैंने जो असफलता के लिए प्रयास किए, मुझे भरोसा है, विश्वास है कि वो मेरे प्रयास पूरी तरह से परफेक्ट थे, उसमें मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसके बाद भी अगर मैं असफल हो गया हूं तो मैं अप्रसन्न तो नहीं हूं, क्योंकि मेरे मन में कोई अफसोस नहीं है। मित्रों, कल मैंने जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खेल की बात की थी, आप देखिए कि ठीक है हमारी टीम हार गई, असफल हो गई, लेकिन जिस जद्दोजहद के साथ वो खेली, जितना टफ फाइट उसने दिया, अंत तक वो संघर्ष करती रही, ठीक है, वो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जीत कर हार गई, तो उसने तो अपना पूरा किया, जिसे हम कहते हैं 100% दिया। तो सच पूछे तो हमारी टीम के मन में अप्रसन्न होने का अब कोई आधार रह नहीं गया है। यह बात अलग है, देखिए कि जब आप असफल होते हैं तो थोड़ा सा अफसोस तो होता है, हम सब मानव हैं, मन है, तो लगता है यार थोड़ा सा यही हो गया होता, थोड़ा सा वो कैच छूट गया होता, थोड़ा सा आउट नहीं हुआ होता, वो रन लेने के लिए दौड़ी नहीं होती तो हम जीत जाते, ये अफसोस मन में रह जाता है। लेकिन अगर प्रयास संपूर्ण है तो याद रखिए कि बहुत अच्छे हमारे पास कारण है कि हमारे जो प्रसन्नता है वह भी संपूर्णता में हो। और आप देखिए कि पूरे देश ने हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है, और उनके कैप्टन को फिर से वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन बना दिया गया है। ये न्यूज में आपने सुना, मतलब ऐसा नहीं कहा गया कि नहीं नहीं आपकी टीम वहां जाकर के चुकी हार चुकी है इसलिए आप योग्य नहीं है, अब हम किसी दूसरे को कैप्टन बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि सफलता के लिए पूरे कारण उनके पास मौजूद है, लेकिन तब जबकि उनके प्रयास संपूर्ण है। तो मित्रों, अगर हम प्रयास को सफलता से जोड़कर देख लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा, तो आपको क्या नहीं लगता कि सही मायने में जब हम सफलता के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, उसी प्रक्रिया में, उसी दौरान, उसी प्रोसेस में सफलता के सारे साधन मौजूद रहते हैं, सफलता के सारे साधन मौजूद हैं। क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी की पूरी प्रसन्नता को किस पर निर्भर कर दिया है, प्रयास पर, कि मैं प्रयास कर रहा हूं, दैट्स ऑल। और मैं जितने प्रयास करता हूं, जब जब प्रयास करता हूं, तब तक मुझे प्रसन्नता होती है। इसी को सरल शब्दों में कह दीजिए फ्रेंड्स कि मुझे काम करने में सुख मिलता है, मैंने अपने जीवन के लिए एक मकसद बना लिया है, चाहे वो एक साल का हो, तीन साल का हो, पांच साल का हो या पूरे जीवन का हो, मैंने एक मकसद बना लिया है और जब मैं उस मकसद के लिए काम करता हूं तो मुझे खुशी मिलती है, दैट्स ऑल। और आइंस्टीन ने मित्रों यही कहा था। आइंस्टीन ने प्रसन्नता शब्द का तो इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि जब हम किसी चीज में सफल हो जाते हैं तो हमें उसके बदले में अवार्ड मिलता है, पुरस्कार मिलता है। बोले उस पुरस्कार की कोई जरूरत नहीं है, जो सच्चा पुरस्कार है वो सच पूछिए तो काम के दौरान मिलने वाला आनंद है। काम के दौरान जो सुख मिलता है उससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है। उसे ही हमारे अभी निवर्तमान राष्ट्रपति जी ने सफलता का नाम दिया है। तो मित्रों आपको लग रहा होगा मेरी बात सुनकर, मैं जानता हूं ज्यादातर लोगों को लगता है कि सर बात कहना तो बड़ा आसान है लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है। मुझे लगता है मित्रों करना शायद सबसे ज्यादा आसान है। और मैं जो ये बात आपसे कह रहा हूं आप यकीन कीजिए, अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं मुझे नहीं मालूम है कि मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मित्रों कल मुझे एक स्टूडेंट का मेल मिला था और उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया था कि सर हम लोग देख रहे हैं कि आप डेली ऑडियो लेक्चर देते हैं तो आपको जाना भी पड़ता होगा, कहीं तबीयत भी खराब होती होगी और भी दूसरे काम रहते होंगे, लेकिन आप डेली ऑडियो फिर इसे निभा कैसे लेते हैं, और हम आपको ये भी सुनते हैं कि आपने ये पिक्चर देखी, आपने ये सीरियल देखा, आप उस प्रोग्राम में गए, तो ये सब हो कैसे जाता है, आप कैसे मैनेज कर लेते हैं। इसका क्या उत्तर है मित्रों? मेरे पास सीधा सा एक उत्तर है कि जब मैं आप लोगों से अपने डेली ऑडियो के माध्यम से बात करता हूं तो मुझे बेहद प्रसन्नता का एहसास होता है। तो मैं अपनी इस खुशी को अपने हाथ से क्यों जाने दूं? दैट्स ऑल, सिर्फ एक उत्तर है, छोटा सा उत्तर। और मैकेनिज्म की मैं बात करूंगा तो फिर मैकेनिज्म में तो ढेर सारी चीजें हैं जो बताई जा सकती हैं, लेकिन एक जो सर्वोत्तम उत्तर हो सकता है वह यह है कि मेरे लिए आप सबसे डेली ऑडियो लेक्चर हो या डेली ऑडियो का लाइफ मैनेजमेंट हो, बात करना एक इबादत की तरह है, एक पूजा की तरह है, वर्शिप है, मेरी प्रसन्नता का सबसे बड़ा आधार है। तो मैं खुश रहता हूं तो मैं अपनी इस खुशी को क्यों अपने हाथ से जाने दूं? दैट्स ऑल। दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हैं, ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। हम लोग इस पर और आगे बात करेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। तो दोस्तों अब वक्त हो चला है, इसी के साथ ही अब मैं आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यही समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।